معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ سماعت فرما رہے ہیں عمران سیریز کا ناول فائٹ پلس. اس کے رائٹر مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. آپ سماعت فرما رہے ہیں پارٹ ون. خاور اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر ایک دلچسپ فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز کمرے میں گونجی. خاور یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا. اس نے سامنے میز پر رکھے ریموٹ کنٹرول کو اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا. اس دوران دوسری بار گھنٹی بجی اور پھر کافی دیر تک بجتی رہی. خاور نے ریموٹ کنٹرول واپس میز پر رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے ڈور فون کا ریسیور ہک سے نکال کر کان سے لگایا اور اس کا بٹن پریس کر دیا. کون ہے؟ خاور نے اونچی آواز میں پوچھا. فرخندہ، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو خاور بے اختیار اچھل پڑا. اس نے جلدی سے ریسیور واپس ہک میں ڈالا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. شکریہ، آپ نے دروازہ تو کھولا، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ مجھے کھل جا سم سم 40 روز تک پڑھنا پڑے گا. دروازے کے سامنے کھڑی ایک نوجوان اور خوبصورت مقابل لڑکی نے مترنم لہجے میں کہا، جس نے مقامی لیکن خاصا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. اس کے بال براؤن کلر کے تھے اور اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے. اس کے کانوں میں انتہائی نفیس اور قیمتی ٹاپ تھے، البتہ انگلیاں اور کلائیاں خالی نظر آ رہی تھیں. آپ نے کس سے ملنا ہے؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مسٹر خاور سے، لڑکی نے جواب دیا تو خاور کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. لیکن میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، خاور نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. کیا یہ سارا انٹرویو آپ نے یہی دروازے پر کھڑے کھڑے لینا ہے؟ کیا اندر کوئی عورت موجود ہے جو آپ مجھے اندر نہیں بلا رہے؟ فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا. آئیے اندر تشریف لائیے، خاور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا. شکریہ، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی عظیم مملکت فتح کر لی ہو اور اب اس مملکت میں بطور کسی فاتح کے داخل ہو رہی ہو، جبکہ خاور ہونٹ بھیجے کھڑا تھا. اچھا صاف ستھرا فلیٹ ہے، لگژری بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی خاصی ہے، فرخندہ نے حال میں پہنچ کر غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. تشریف رکھے محترمہ، خاور نے کہا. کیا میں آپ کو بوڑھی کھوٹت نظر آ رہی ہوں یا آپ کی آنکھوں میں کوئی پرانے دور کے لینس لگے ہوئے ہیں کہ سب آپ کو پرانے دور کے بوڑھے ہی نظر آتے ہیں؟ فرخندہ نے پلٹ کر قدرے غصے لہجے میں کہا. میں نے تو بیٹھنے کے لیے ہی کہا تھا، یہ بڑھاپا کہاں سے درمیان میں داخل ہو گیا؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ بوڑھے اور تکلف زدہ لفظ، تشریف رکھیں اور پھر محترمہ، اس نے تو لٹیا ہی ڈبو دی. ابھی پوچھ رہے ہو کہ بڑھاپا کہاں سے آ گیا؟ فرخندہ نے بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا. وہ اب یہ سوچ کر نارمل ہو گیا تھا کہ فرخندہ کوئی ایسی لڑکی ہے جسے ٹی وی چینلز پر آنے والے ڈرامے دیکھ کر خود بھی ڈرامے کرنے کا شوق ہو گیا ہے. شکر ہے تم ہنسے تو صحیح، ورنہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اجنبی لڑکی کو اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر تم کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر گر سکتے ہو. فرخندہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. یہ حقیقت ہے کہ اس فلیٹ میں جب سے میں موجود ہوں تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں داخل ہوئی ہو. خاور نے فریج سے جوس کے 2 ٹن نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا. واہ، غیر ملکی جوس، یہ تو مزید اچھی خبر ہے. فرخندہ نے جوس کا ٹن اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا. یہ تم پہلیوں میں بات کیوں کرتی ہو؟ کیسی اچھی خبر؟ خاور نے کہا. کیا تمہارا آئی کیو لیول اس قدر نیچے ہے کہ تم سیدھی سیدھی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ پہلی اچھی خبر یہ تھی کہ فلیٹ اچھا صاف ستھرا اور لگژری تھا. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ غیر ملکی جوس پینے اور پلانے والا خاصی معاشی طور پر خاصا مضبوط ہوتا ہے. فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا. لیکن اس میں تمہارے لیے کیا اچھی خبر ہے؟ خاور نے حیران ہوتے ہوئے کہا. मेरे लिए ही तो ये अच्छी खबरें हैं, क्योंकि अब मैं मुस्तकिल तौर पर इसी फ्लैट में रहूंगी। परखंदा ने जूस का एक बड़ा सिप लेते हुए कहा तो खावर बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या कह रही हो तुम? खावर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बड़ी बुढ़िया किसी जमाने में जब अपनी बेटियों को डोलियों में बिठाया करती थी तो कहा करती थी कि अब तुम्हारा इस घर से जनाजा ही निकलेगा जिस घर में डोली जाकर रखी जाएगी। वैसे खावर, कैसा रोमांटिक माहौल होगा? एक बापर्दा डोली है, इसमें दुल्हन बैठी हुई है, दो आदमी इस डोली को अपने कांधों पर रखे हुए हैं और अंधेरे का सफर शुरू हो जाता है। बेचारी दुल्हन को मालूम ही नहीं कि ये अंधेरे का सफर कहाँ जाकर खत्म होगा, कैसा मकान होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा दूल्हा होगा, और उस पर ये धमकी कि तुम्हारा जनाजा ही वहां से निकलेगा। परखंदा ने मजे लेकर बोलते हुए कहा, सॉरी मुझ मिस फरखंदा, बहुत हो गया, अब तुम जा सकती हो। कावर ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। इस तरह आंखें निकालने और संजीदा होने से कुछ नहीं होगा, और तुमने दोबारा ऐसी मशक की तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा और तुम्हें अपनी बाकायदा जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी, इसीलिए इजी रहो। और खन्ना ने बाकायदा उसे डांट पिलाते हुए कहा, तुम हो कौन और क्या चाहती हो? खावर ने कहा। अब वो वाकई इंतहाई संजीदा था। ये अच्छा सवाल है। सारी रात यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुनते रहे और सुबह को पूछ रहे हो कि जुलेखा कौन है? 50 बार बता चुकी हूँ कि मैं फरफंदा हूँ, और अब फिर पूछ रहे हो कि तुम हो कौन? हैरत है। और डोली जनाजे की बातें भी सुनी है और फिर भी पूछ रहे हो कि तुम क्या चाहती हो? हैरत है। इस कदर भी किसी का आईक्यू लेवल डाउन हो सकता है? फरखंदा ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें गर्दन से पकड़कर बाहर फेंकना ही पड़ेगा। खावर ने सर्द लहजे में कहा तो फरखंदा बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हें अगर ये फ्लैट पसंद आ गया है तो तुम यहीं रहो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, खावर ने जिद होते हुए कहा। अब तो हमारा जन्म जन्म का साथ है। मुझे हिजरत फराक पर मबनी गाने पसंद नहीं है, फरखंदा ने मुंह बनाते हुए कहा। सिद्दीकी, चौहान और नोमानी तीन दोस्त हैं मेरे। मैं इन तीनों को यहाँ बुला रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे बारे में फैसला कर सके, खावर ने कहा। तो फरखंदा बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारा मतलब है कि मैं फोर स्टार्स का केस हूँ जिसे तुम चारों मिलकर हल करोगे? फरखंदा ने कहा तो खावर बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे के आसाब तन गए थे। सच सच बताओ, कौन हो तुम? खावर का लहजा यकलख्त फाड़ खाने वाला हो गया। अरे अरे, क्या हुआ? इस कदर गुस्सा क्यों आ गया है तुम्हें? और सुनो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं आम सी लड़की हूँ और तुम्हारे सामने सर झुकाकर बैठ जाऊंगी, और अगर तुम मारोगे तो सिसकियां ही लेती रहूंगी, तो ये गलत है। मैंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की है, इसलिए होश में रहकर कोई हरकत करना। और वैसे मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि तुम्हें इस कदर गुस्सा आ गया है? दारुल हुकूमत के आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि तुम चारों ने मिलकर एक खुफिया तंजीम फोर स्टार बनाई हुई है, और तुम इस तंजीम के तहत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हो। अगर मैंने ये बात कर दी है तो इस कदर मिर्चे क्यों चबा रहे हो? और ये बात भी सुन लो कि तुम चारों स्टार हो लेकिन मैं सुपर स्टार हूँ, परखंदा ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, और तुम मुझे कैसे जानती हो? खावर ने पहले से ज्यादा संजीदा लहजे में कहा। उसके जहन में धमाके होने शुरू हो गए थे। वो सोच भी ना सकता था कि एक लड़की आकर इस तरह खुलकर बात करेगी। क्या तुम्हारा ताल्लुक जेरे जमीन दुनिया से है? खावर ने पूछा। जेरे जमीन दुनिया? जेरे जमीन दुनिया में तो हशरातुल अर्ज रहते हैं। क्या मैं तुम्हें हशरातुल अर्ज में से नजर आ रही हूँ? परखंदा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तुम यहाँ आई कैसे हो? खावर ने एक और पहलू से बात करते हुए कहा। यहाँ से गुजर रही थी कि बाहर दरवाजे पर तुम्हारे नाम की प्लेट नजर आई। मेरे नाम में भी खे मौजूद है और तुम्हारे नाम का आगाज भी खे से होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जगह मेरे लिए शानदार रहेगी। मैंने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया और फिर तुम नजर आए तो तुम्हें और भी खुश हो गई, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक 4 स्टार्स से है और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मुजरिमों के खिलाफ काम करना पसंद करते हैं। और फंदा ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा, यहाँ आने से पहले तुम कहाँ थी? खावर ने पूछा। एक जूस के टिन पर तुमने मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया। कुछ शर्म करो, मुझे किसी अच्छे से होटल में ले जाओ और खाना खिलाओ, फिर आगे बात होगी। और फंदा ने कहा, उसकी जहनी रो या कलफ बदल गई थी। ओके आओ, खावर ने उठते हुए कहा। तो फरखंदा भी एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए थे। किस होटल में ले जाओगे? किसी अच्छे होटल में ले जाना, सुना तुमने? मुझे घटिया होटलों से बेहद नफरत है। फरखंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मुझे भी तुम्हारी तरह घटिया होटलों से नफरत है। कावर ने कहा, वाह, इसे कहते हैं जहनी हम आहंगी। फरखंदा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। तो खावर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो इसलिए फौरन तैयार हो गया था कि इस तरह वो अपना फ्लैट इससे खाली करा सकता था, वरना उसे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि वो एक अच्छी भली समझदार लड़की को किस तरह अपने फ्लैट से बाहर निकाला जाए। जहां तक होटल जाने का ताल्लुक था, वो किसी होटल में ले जाने के बजाय 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर ले जा रहा था, ताकि सिद्दीकी और दूसरे साथियों को कॉल करके फरकंदा का मसला उनके सामने पेश कर सके। अरबाब का मुखबरी का नेटवर्क पूरे पाक एशिया में फैला हुआ था। उसने दारुल हुकूमत के एक बिजनेस प्लाजा में बाकायदा ऑफिस बनाया हुआ था, जिसके बाहर तो किसी और बिजनेस का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन यहाँ बैठकर अरबाब ना सिर्फ बिजनेस कॉलें वसूल करता था बल्कि अपने आदमियों को हिदायत भी देता रहता था। यहाँ इससे पूरा स्टाफ रखा हुआ था जो फाइल वर्क करता था। इसकी बीवी लैला का ऑफिस भी यही था, लेकिन लैला किसी एक जगह टिककर बैठने की आदी ही ना थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से आती और अपनी मर्जी से चली जाती थी। वो पहले से ज्यादा फैल गई थी, हालांकि स्लिम होने के लिए वो ना जाने कौन कौन सी वर्जिशें करती रहती थी, लेकिन चूंकि खाने में और आइसक्रीम में उससे परहेज ना हो सकता था, इसलिए उसकी वर्जिश और उसका उस पर कोई असर ना होता था। अरबाब इस वक्त एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बजी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अरबाब बोल रहा हूँ, अरबाब ने कहा, क्योंकि फोन डायरेक्ट था। लैला बोल रही हूँ अरबाब, पर फंदा न जाने कहाँ चली गई है। उसकी बीवी लैला की आवाज सुनाई दी, लहजे में परेशानी नुमाया थी। वो एक मुहावरा है, खस कम जहां बाक, अब मैं वही कह सकता हूँ, अरबाब ने संजीदा लहजे में कहा। और अगर मैं घर से चली जाऊं तो तुम कौन सा मुहावरा बोलोगे? लैला ने खाट काट खाने वाले लहजे में कहा। अब क्या किया जाए, हाथी गुम ही नहीं हो सकता, अरबाब ने मुंह बनाते हुए कहा। बस बस, अपनी ये मच्छर वाली भय भय बंद करो और फरफंदा को तलाश करो, लैला ने चीखते हुए कहा। तलाश कराओ क्या मतलब? क्या वो दूध पीती बच्ची है? उसका जहनी तवाजुन खराब है जो मैं उसे तलाश करूं? अच्छी खासी होशियार, तेज बल्कि अय्यार लड़की है, आ जाएगी खुद ही फिर फिर आकर। बेफिक्र रहो, तुमसे ज्यादा होशियार है तुम्हारी लाडली, अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। और अगर ना आई तो? लैला ने कहा। तो फिर वही मुहावरा बोलना पड़ेगा। बहरहाल फिक्र मत करो, आसानी से जान छोड़ने नहीं वाली वो, अरबाब ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फरखंदा लैला की छोटी बहन थी, वो ग्रेट लैंड में रहती थी। जब अरबाब यहाँ सेटल हो गया तो लैला ने भी उसे यहाँ वहां से मुस्तकिल तौर पर यहाँ बुला लिया था। फरखंदा को जराइम और मुजरिमों से बेहद दिलचस्पी थी। उसने ग्रेट लैंड में क्रिमिनोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। उसके साथ साथ उसने वहाँ मार्शल आर्ट और शूटिंग वगैरह की भी बाकायदा ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो लड़ने भिड़ने से भी ना घबराती थी। और तमाम दिन होटलों, क्लबों और ऐसी जगहों पर घूमती रहती थी जहां उसके मतलब के लोग आते जाते रहते थे। अरबाब पहले तो इसकी इस मसरूफियत पर बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर जब उसके आदमियों ने उसे रिपोर्टें दी कि फरखंदा का किरदार बहुत मजबूत है, तो वो मुतमईन हो गया। वैसे चूंकि उसके आदमी हर क्लब, होटल, जुए खाने और इस किस्म के तमाम मुकाम पर मुस्तकिल मौजूद रहते थे, इसलिए उसे ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी। गो वो लैला से कई बार कह चुका था कि फरखंदा आवारा ऊँटनी की तरह फिरती रहती है, इसलिए उसकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए, लेकिन लैला हर बार टाल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि फरखंदा को जब भी कोई पसंद आया तो वो बबांगे दोहल उससे शादी करने का ऐलान कर देगी। अब अरबाब फाइल के आखिरी सफे पर था कि फोन की घंटी एक बार फिर बजी, तो उसने चौंक कर फोन उठाया। अरबाब बोल रहा हूँ, अरबाब ने कहा। तुम बस बोलते ही रहोगे। मैंने तुम्हारे नेटवर्क के 3 आदमियों से पूछ लिया है, परखंदा के बारे में किसी को भी नहीं मालूम, लैला ने परेशान से लहजे में कहा। तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे आज से पहले तो तुमने कभी इतनी परेशानी जाहिर नहीं की, आज क्या बात है? अरबाब ने फाइल बंद करते हुए कहा। मालूम नहीं क्या बात है, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे फरखंदा किसी मुश्किल में हो। तुम अपने तमाम नेटवर्क को अलर्ट कर दो और दूसरे नेटवर्क को भी कह दो कि वो फरखंदा के बारे में इत्तला दें, लैला ने कहा। इसकी फीस कौन देगा? अरबाब ने पेशावराना लहजे में बात करते हुए कहा। और अगर फरखंदा मुश्किल में हुई और तुम फीस मांगते रहे तो तुम्हें मालूम है कि क्या होगा, लैला ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। इतनी फीस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी कि एक दिन के लिए तुम्हारी आइसक्रीम का बिल ना आए, अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास नहीं आएगा बिल, बल्कि बराह रास्त तुम्हारे बैंक पहुंच जाएगा, लैला ने कहा, और उसके साथ ही रابطہ खत्म हो गया। तो अरबाब ने रिसीवर रखकर साथ पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे चंद बटन प्रेस कर दिए। यस सर, मोहसिन बोल रहा हूँ। रابطہ कायम होते ही दूसरी तरफ से उसके ऑफिस मैनेजर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। फरखंदा की तलाश और रिपोर्टिंग में पूरे नेटवर्क को अलर्ट कर दो, अरबाब ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि जल्द ही फरखंदा के बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट मिल जाएगी। उसने पहली फाइल रखकर एक और फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अरबाब ने कहा। मोहसिन बोल रहा हूँ सर, अभी अभी इत्तला मिली है कि मिस फरखंदा कोरियन रिहायशी प्लाजा में देखा गया है। वो इस प्लाजा के फ्लैट नंबर 111 में गई थी। ये फ्लैट किसी खावर नामी आदमी का है। उसके बाद मिस फरखंदा को एक आदमी समेत कार कॉलोनी में देखा गया है, मोहसिन ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ये खावर कौन है? अरबाब ने हैरान होते हुए पूछा। सर, वो 4 स्टार्स का रुकुन है, मोहसिन ने कहा। तो अरबाब बेख्तियार उछल पड़ा। 4 स्टार्स? ओह, ये फरखंदा उनसे कैसे टकरा गई है? अरबाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे 4 स्टार्स के बारे में पूरी तफसील का इल्म था। ये 4 अफराद पर मुश्तमिल सरकारी तंजीम है और ये चारों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के भी रुकुन हैं। और इस 4 स्टार तंजीम का चीफ सिद्दीकी है, और 4 स्टार तंजीम मुकामी मुजरिमों और तंजीमों के खिलाफ अपने तौर पर काम करती रहती है। इसका हेडक्वार्टर स्टार कॉलोनी की एक कोठी में है। ये तो मालूम नहीं हो सका जनाब, मोहसिन ने जवाब दिया। तुम्हें मालूम तो होगा कि 4 स्टार का हेडक्वार्टर भी स्टार कॉलोनी में है। उसका फोन नंबर क्या है? अरबाब ने कहा। मैं मालूम करके बताता हूँ जनाब, मोहसिन ने कहा। तो अरबाब ने रिसीवर रख दिया। गो इसका ताल्लुक बराह रास्त 4 स्टार से ना था, लेकिन उसने सोचा कि वो हेडक्वार्टर फोन करके अली इमरान का हवाला देकर बात करे तो यकीनन बात हो जाएगी। वो फरखंदा से बात करने से पहले इमरान से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इमरान की आदत को जानता था कि उससे बातों ही बातों में उसका हशर कर देना है। चंद लम्हों बाद मोहसिन ने उसे कोठी का नंबर और फोन नंबर बता दिया। तो अरबाब ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जी साहब, राब्ता कायम होते एक मुद्दबाना आवाज सुनाई दी। आप स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 12 से बोल रहे हैं? अरबाब ने पूछा। जी साहब, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब सुनाई दिया। सिद्दीकी साहब या उनका कोई साथी यहाँ मौजूद है तो उनसे मेरी बात करा दें। मेरा नाम अरबाब है और मैं अली इमरान साहब का दोस्त हूँ, अरबाब ने कहा। सिद्दीकी साहब कौन है जनाब? ये कोठी तो चौधरी अहसान इलाही की है। मेरा नाम अहसन है और मैं इसका चौकीदार हूँ। वो आजकल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, दूसरी तरफ से उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। क्या यहाँ कोई खातून खावर साहब के साथ नहीं आई? अरबाब ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं जनाब, यहाँ किसी खातून का क्या काम? कोठी तो खाली है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ साथ राब्ता खत्म कर दिया। तो अरबाब ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए फोन रख दिया। जाहिर है अब इमरान से राब्ता करना जरूरी हो गया था, वरना उन्होंने तस्लीम भी नहीं करना कि यहाँ कोई फरफंदा आई भी है या नहीं। जाहिर है वो फोर स्टार्स की सीक्रेट तंजीम का हेडक्वार्टर था, कोई आम सी कोठी तो ना थी। उसने क्रेडल दबाया और टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही इमरान के बावर्ची सुलेमान की आवाज सुनाई दी। सुलेमान साहब, अरबाब बोल रहा हूँ, इमरान साहब हैं फ्लैट पर? अरबाब ने कहा। इस वक्त तो नहीं है, अलबत्ता एक घंटे तक आ जाएंगे, वो अपने डैडी की कोठी पर गए हैं, सुलेमान ने जवाब दिया। कोठी का फोन नंबर क्या है? अरबाब ने पूछा। वो वहाँ भी नहीं मिलेंगे, वो अपनी अम्मा बी को साथ लेकर किसी करीबी गांव गए हुए हैं। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा और वो आपको खुद फोन कर लेंगे, सुलेमान ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, अरबाब ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो मजीद क्या कर सकता था? उसी लम्हे डायरेक्ट फोन की घंटी बजी तो उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठा लिया। अरबाब बोल रहा हूँ, अरबाब ने कहा। कुछ पता चला फरखंदा का? दूसरी तरफ से लैला की आवाज सुनाई दी। हाँ, मिस फरखंदा इस वक्त फोर स्टार्स की तहवील में है, अरबाब ने कहा। फोर स्टार्स? तुम्हारा मतलब है वो इमरान साहब वाली फोर स्टार्स? लैला ने चौंक कर कहा। चूंकि वो भी ऑफिस बेड में बैठती रहती थी इसलिए उसे खासी मालूमात थी। हाँ वही, अरबाब ने जवाब दिया। लेकिन तहवील से तुम्हारा क्या मतलब है और फरखंदा उन तक कैसे और क्यों पहुंची? लैला ने कहा। तो अरबाब ने उसे हासिल होने वाली मालूमात और फिर फोर स्टार्स के हेडक्वार्टर्स फोन करने से लेकर इमरान के फ्लैट पर फोन करने तक तमाम तफसील बता दी। ओह, तुमने खावर का नाम लिया है। अब मुझे याद आ रहा है कि 2-4 रोज पहले फरखंदा ने मुझसे फोर स्टार्स के बारे में पूछा था और मैंने जब इसका सवाल की वजह पूछी तो उसने बताया कि एक क्लब में एक मुकामी आदमी खावर का किसी बदमाश से झगड़ा हो गया था और खावर ने इस अंदाज उस बदमाश की हड्डियां तोड़ी कि फरखंदा उससे बेहद मुतासिर हुई। उसने एक वेटर से मालूम किया तो उसने उसे बताया कि इस आदमी का नाम खावर है और इसका ताल्लुक फोर स्टार से है। वो खावर से बेहद मुतासिर नजर आ रही थी, जिस पर मैंने उसे इमरान साहब और फोर स्टार्स के बारे में तफसील बता दी थी, लैला ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अपनी बहन की फातिहा ख्वानी का बंदोबस्त कर लो, अरबाब ने कहा। क्या कह रहे हो, क्या मतलब? लैला ने चीख कर कहा। तुम्हारी बात सुनकर सूरत हाल वाजे हो गई है। फरखंदा खावर से मुतासिर होकर उसके फ्लैट पर पहुंच गई और जाहिर है खावर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, इसलिए वो चौंक पड़ा होगा और फिर वो फरखंदा को लेकर फोर स्टार्स के हेडक्वार्टर पहुंच गया। और उसके बाद अगर तो फरखंदा ने उनके सामने मेरा और तुम्हारा नाम ले लिया तो ठीक, वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है कि वो खामखा किसी लड़की को मार दें? लैला ने कहा। तंजीमों को खुफिया रखने के लिए अफराद को अहमियत नहीं दी जाती, बहरहाल दुआ करो कि फरफंदा बच जाए। वैसे शेरों की कछार में घुस जाने वाली बकरी बचा नहीं करती, अरबाब ने कहा और इसी पर रख दिया। अब उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। एक बार उसने सोचा कि वो कार लेकर खुद 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर जाए, लेकिन फिर इसने अपना इरादा यह सोचकर तर्क कर दिया कि चौकीदार ने किसी सूरत भी इस बात को तस्लीम नहीं करना, इसलिए उसने इमरान की कॉल का इंतजार करने का फैसला किया। वैसे उसने लैला को तंग करने के लिए बात कर दी थी, वरना उसे मालूम था कि फरखंदा तरने वाला नहीं है, वो उल्टा उनके लिए मसला बनी हुई होगी। ये तुम मुझे कौन से होटल ले जा रहे हो? उधर मुजाफात में तो कोई होटल नहीं है, फरकंदा ने हैरान होकर साथ बैठे हुए खावर से मुखातिब होते हुए कहा। इस तरफ स्टार कॉलोनी है, वहां मेरा एक दोस्त रहता है, उसको साथ लेने फिर होटल चलेंगे, खावर ने कहा। तो फरकंदा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, तुम मुझे इस अंदाज में बहला रहे हो जैसे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, और मुझे मालूम है कि तुम फौरन होटल चलने पर क्यों आमादा हो गए थे, ताकि कम अज कम मैं तुम्हारे फ्लैट से निकल जाऊं। और ये मैं बता दूं कि मुझे इल्म है कि स्टार कॉलोनी में तुम्हारे तंजीम 4 स्टार्स का हेडक्वार्टर है, फरखंदा ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लेकिन खावर ने कोई जवाब ना दिया, वो होंठ भींचे खामोश बैठा रहा। वो वाकई इस लड़की को समझ ही ना सका था जिसे 4 स्टार्स के बारे में सब कुछ मालूम था, हत्ता कि उसके हेडक्वार्टर के बारे में भी वो जानती थी। तुम खामोश क्यों हो गए? क्या मैंने बात गलत की है? परफंदा ने हंसते हुए कहा। स्टार कॉलोनी में मेरे दोस्त की कोठी है, तुम उसे खामखा हेडक्वार्टर का नाम दे रही हो, खावर ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। इस तरह तुम्हारे दोस्त, बल्कि हो सकता है दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए, परफंदा ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। इस दौरान कार स्टार कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी और फिर एक कोठी के बंद गेट के सामने कार रुक गई। खावर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो छोटा फाटक खुल गया और एक नौजवान बाहर आया। फाटक खोलो एहसन, खावर ने खिड़की से सर बाहर निकाल कर कहा। यस सर, नौजवान ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। फरखंदा अब खामोश बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया और खावर कार अंदर ले गया और उसने वसी वरीज पोर्च में कार रोक दी और फिर नीचे उतर आया। इस तरफ से फरफंदा भी नीचे उतर आई। जिस दोस्त से तुम मिलने मिलाने लाए हो वो कहाँ है? फरफंदा ने कदर तंजिया लहजे में कहा, लेकिन वो वहीं रुक गई थी। क्या हुआ, आओ, खावर ने मुड़ते हुए कहा। तुमने मुझे अंदर आने की दावत ही नहीं दी, परखंदा ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़कर वो खावर के साथ चलती हुई अंदरूनी इमारत में पहुंच गई। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त जिसे तुमने साथ ले जाना था? परखंदा ने तंजिया लहजे में कहा। अभी आ जाएगा, खावर ने सिटिंग रूम में रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन फिर अचानक उसने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ, नंबर क्यों नहीं मिलाया? परखंदा ने चौंक कर कहा, जिसकी नजरें खावर के हाथ पर जमी हुई थीं। तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे सामने फोन नहीं करना चाहता। खावर चंद लम्हों तक खामोश रहा तो फरखंदा बेख्तियार हंस पड़ी। तुम किसे बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को, नोमानी को या चौहान को? फरखंदा ने कहा तो खावर के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम इन सबको कैसे जानती हो, खावर ने रुक रुक कर कहा। कहो तो इनके फोन नंबर भी बता दूं, परखंदा ने कहा। उसके साथ ही उसने तेजी से बारी बारी इन तीनों के फोन नंबर भी बताने शुरू कर दिए और खावर की हालत देखने वाली हो गई। वो चंद लम्हे साकित बैठा रहा, फिर उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। तो तुम सिद्दीकी को कॉल कर रहे हो, वो तुम्हारा चीफ है। मैं पहले भी इसीलिए फोन को देख रही थी ताकि मालूम हो सके कि कि तुम किसे कॉल कर रहे हो। फरखंदा ने कहा तो खावर ने कोई जवाब देने के बजाय इस बात में सर हिला दिया, जबकि फरखंदा ने आगे बढ़कर खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। सिद्दीकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। हेडक्वार्टर से खावर बोल रहा हूँ, तुम फौरी तौर पर यहाँ आ जाओ, एक अहम मसला दरपेश है। खावर ने कहा, कैसा मसला? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, एक जीता जागता और सांस लेता हुआ मसला है, तुम बस फौरी आ जाओ। खावर ने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं तुम्हारे लिए मसला हूँ। क्यों? फरखंदा ने आंखें निकालते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया क्योंकि सिद्दीकी से मशवरा करना जरूरी है। खावर ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सिद्दीकी को फोन करके उसके जहन पर मौजूद सैकड़ों टन वजन हट गया हो और वो अब नॉर्मल हो गया हो। हमेशा के लिए छुटकारा क्या मतलब? परकंदा ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश यहाँ मौजूद बर्फी भट्टी में डालकर जला दी जाती और तुम हमेशा के लिए सफाई हस्ती से गायब हो जाती। खावर ने बड़े बेरहम से लहजे में कहा, क्या तुम बेगुनाहों को मारने के लिए ये तंजीम बनाई है? मैंने क्या कसूर किया है? सिर्फ यही कि तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारी इजाजत से गई हूँ। यहाँ तो तुम मुझे खुद लेकर आए हो। फरखंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। खावर ने कहा, और अगर सिद्दीकी के आने से पहले मैंने तुम्हें गोली मार दूं फिर? परखंदा ने कहा, मार सकती हो तो मार दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। खावर ने कहा। दूसरे लम्हे परखंदा के हाथ में एक छोटा सा लेकिन इंतहाई जदीद साख का मशीन पिस्टल नजर आने लगा और जाहिर है उसका रुख सामने बैठे खावर की तरफ ही था। ये साइज में छोटा है लेकिन इसकी फायरिंग से इंसान तो इंसान हाथी भी फौरन हलाक हो जाता है। दिखाऊं तुम्हें कि तुम कैसे मरते हो? परखंदा ने कहा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभरते चले गए। उसके साथ ही कमरा रेट रेट की तेज आवाजों और इंसानी चीख से गूंज उठा। इमरान जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुआ सुलेमान ने उसे अरबाब के फोन के बारे में बता दिया। अरबाब का फोन कोई अहम मामला ही होगा, इमरान ने कहा। फिर उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर लिबास तब्दील किया और फिर सिटिंग रूम में आकर इसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके साथ ही वो कुर्सी पर भी बैठ गया। अरबाब बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही अरबाब की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc बोल रहा हूँ। खैरियत है मिस लैला? नसीब मजनू खैरियत तो है, इमरान ने कहा। लैला तो ठीक है इमरान साहब, अलबत्ता लैला की बहन गायब हो गई है और सुना है कि उसको गायब करने में आपके 4 स्टार्स का हाथ है। अरबाब ने जवाब दिया तो इमरान बेअख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम संजीदा हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इसलिए संजीदा हूँ कि लैला अपनी बहन के गम में डबल आइसक्रीम खा चुकी है और मुसलसल खाए चली जा रही है और साथ साथ उसका सवाब अपनी बहन फरखंदा को पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान उसकी बारीक बात समझ गया कि लैला की बहन फरखंदा को हलाक कर दिया गया है और ये काम 4 स्टार्स ने किया है। और यही बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि 4 स्टार्स ने ऐसा क्यों किया है। ये तुम्हारी साली खुद रो पौधा है या किसी शहाबे साकिब के साथ जमीन पर उतरी है? इमरान ने कहा। ये मोहतरमा ग्रेट लैंड में रहती थी, वहां उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की और उसके बाद शूटिंग के मुकाबलों में कई ट्रॉफियां भी जीती हैं। उसके बाद इन मोहतरमा को अपनी बहन की याद ने तड़पाया तो ये पाकेशिया तशरीफ ले आई, अरबाब ने तफसील बताते हुए कहा। मतलब है कि पली पलाई साली मिल गई है तुम्हें, सुलेमान बता रहा था कि तुमने बड़ी परेशानी के आलम में फोन किया है। क्या हुआ है? इमरान साहब, आप शादीशुदा ना होने के बावजूद मुझ जैसे शादीशुदा मजलूम मर्दों की कैफियत को समझ सकते हैं कि बेगम के रिश्तेदारों को अगर छींक भी आ जाए तो बेगम के शौहर नामदार को उठकर रुमाल पेश करना पड़ता है, और जहां मामला बेगम की बहन का हो वहां बेचारे को क्या क्या करना पड़ता होगा। अरबाब ने रो देने वाले लहजे में कहा तो इमरान उसकी अदाकारी पर बेख्तियार हंस पड़ा। चलो रुमाल की हद तक तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, इमरान ने कहा तो अरबाब बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, फरकंदा गायब है और मेरी मुखबरी के नेटवर्क वाले नेटवर्क ने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक फरकंदा को रेनबो प्लाजा में रिहाइश पजीर 4 स्टार के रुकन खावर के फ्लैट पर जाता देखा गया था। फिर इन दोनों को मुजाफाती कॉलोनी, जिसे स्टार कॉलोनी कहा जाता है, की एक कोठी के करीब देखा गया, जिसे 4 स्टार का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। इस कोठी के चौकीदार को मैंने आपका हवाला देकर फोन किया लेकिन उसने हर बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद मैंने आपके फ्लैट पर फोन किया। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि फरकंदा ड्रामा रख करने की बहुत शौकीन है और 4 स्टार के अरकिन इस ड्रामाई सूरत हाल से उसे तंग आकर गोली न मार दें। अरबाब ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम 4 स्टार को कैसे जानते हो? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, 4 स्टार को तो पूरी अंडरवर्ल्ड जानती है, वो यहाँ जो कार्रवाइयाँ करते हैं 4 स्टार के नाम से ही करते हैं। अलबत्ता मैं उन्हें आपके हवाले से भी जानता हूँ, और फिर आपको तो मालूम है कि मेरा मुखबरी का नेटवर्क है, इसलिए मुझसे क्या छुपा रह सकता है। लेकिन मेरा मामला सिर्फ मालूमात हासिल करने तक ही महदूद रहता है, हमने कभी किसी के मामलात में मामूली सी भी मुदाखलत नहीं की। अरबाब ने इस बार कदर संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, लेकिन फरकंदा तो अंडरवर्ल्ड में काम नहीं करती, फिर उसे खावर के फ्लैट का इल्म कैसे हुआ और वो खुसूसी तौर पर उसके फ्लैट पर क्यों गई? इमरान ने कहा, वो सनकी सी लड़की है और उसके पास कोई ऐसी ही सनकी सी वजह होगी, वैसे ये तो वो खुद ही बता सकती है, मुझे तो मालूम नहीं है। अरबाब ने कहा, तुम्हारी इस साड़ी का कोई ताल्लुक किसी एजेंसी या तंजीम से तो नहीं है? इमरान ने पूछा। जो कुछ मुझे बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है, मुझे ग्रेट लैंड में इसके मामूलात का कोई इल्म नहीं, अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम करके तुम्हें बताता हूँ, इमरान ने कहा, और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही और किसी ने कॉल अटेंड ना की तो इमरान समझ गया कि खावर का फ्लैट लॉक होगा, और उसने एक बार फिर क्रेडल दबाया और टोन आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस सर, एहसन बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से 4 स्टार के हेडक्वार्टर के चौकीदार एहसन की आवाज सुनाई दी। अली, इमरान बोल रहा हूँ, यहाँ खावर होगा, उससे बात कराओ, इमरान ने कहा। जी अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो इमरान साहब, मैं खावर बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद खावर की आवाज सुनाई दी। वो लड़की फरकंदा कहाँ है? इमरान का लहजा यकलख्त खुश्क हो गया। यहाँ मौजूद है, सिद्दीकी उससे पूछगछ कर रहा है। लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं और आपको कैसे मालूम हो गया कि वो यहाँ है? खावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरबाब और लैला को जानते हो, जो मुखबरी का नेटवर्क चलाते हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, खावर ने जवाब दिया। फरकंदा लैला की बहन है और अरबाब की साली है, मैं खुद आ रहा हूँ, फिर तफसील से बातें होंगी, मैंने फरकंदा से भी पूछगछ करनी है, इमरान ने कहा। पूछगछ? क्या मतलब, कोई मशकूक मामला है? खावर ने चौंक कर कहा। अभी तो कोई मशकूक मामला नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा, और रिसीवर रख कर वो उठा और सुलेमान को दरवाजा बंद करने का कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार 4 स्टार के हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी। उसने हॉर्न बजाया तो एहसन बाहर आया। और फिर इमरान को सलाम करके उसने बड़ा फाटक खोल दिया और इमरान कार पोर्च में लाकर रोक दी। उसी लम्हे सिद्दीकी बरामदे की सीढ़ियां उतरकर इमरान की तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है सिद्दीकी? खावर इस लड़की को यहाँ क्यों लाया है? इमरान ने खुश लहजे में सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, ये लड़की बजाहिर तो ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जहनी तौर पर पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तो फिर उसे किसी अस्पताल ले जाना चाहिए था, इमरान ने पहले से ज्यादा खुश लहजे में कहा। अगर आपका फोन चंद लम्हे देर से आता तो हम वाकई ऐसा ही करते। इस लड़की ने खावर पर फायर खोल दिया था। ये तो खावर की फुर्ती और बरवक्त कार्रवाई थी कि उसे बचा गई, वरना शायद यहाँ खावर की लाश मिलती, सिद्दीकी ने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या कह रहे हो? इमरान ने चौंककर और हैरत भरे लहजे में पूछा। खावर ने उसे बेहोश कर दिया है। आपका फोन इस वक्त आया जब मैं खावर से सारी तफसील सुन रहा था, इसलिए हमने मजीद कार्रवाई रोक दी, वरना मैं वाकई उसे किसी अस्पताल में दाखिल करा देता, सिद्दीकी ने कहा। क्या अभी तक वो बेहोश है? जी हाँ, वो और खावर सिटिंग रूम में बैठे हुए थे। खावर मुझे फोन कर रहा था कि अचानक उस लड़की ने जदीद तरीन लेकिन छोटे से साइज का मशीन पिस्टल निकाला और उसके चेहरे पर ऐसी सफाकी उभर आई कि खावर समझ गया कि वो उसे गोली मारने वाली है। खावर ने बिजली की सी तेजी से हाथ मारा, लेकिन वो लड़की फायर खोल चुकी थी। लेकिन खावर की फुर्ती की वजह से गोलियां खावर की साइड से निकल गईं और खावर ने उसके साथ ही उसकी कनपटी पर जरब लगा दी, जिसकी वजह से वो चीख कर कुर्सी से नीचे गिरी और उसने उछल कर खावर पर हमला करने की कोशिश की तो खावर ने उसकी कनपटी पर लात जमा दी और वो बेहोश हो गई, सिद्दीकी ने तफसील बताते हुए कहा। इस दौरान वो दोनों सिटिंग रूम में पहुंच गए थे, जहां एक कुर्सी पर एक नौजवान लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी कनपटी पर नीले रंग का निशान वाजे तौर पर नजर आ रहा था। खावर भी वहां मौजूद था। उसने इमरान को सलाम किया और फिर इमरान के पूछने पर उसने भी वही कहानी दोहरा दी तो सिद्दीकी पहले सुना चुका था। इसकी तलाशी ली है? इमरान ने पूछा। नहीं, यहाँ कोई औरत नहीं है, इसलिए मजबूरी है, खावर ने जवाब दिया। तो इमरान का सूता हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। वहाँ फ्लैट में क्या बातें हुई थी और तुम यहाँ इसे क्यों ले आए? क्या इसने खुद कहा था? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब इसका लहजा पहले से कहीं नर्म और नॉर्मल था। खावर ने इसके अचानक फ्लैट पर आने से लेकर यहाँ तक पहुँचने की तमाम तफसील बता दी। वो मशीन पिस्टल कहाँ है? इमरान ने कहा। तो खावर ने एक तरफ मौजूद अलमारी में से एक छोटे साइज का जदीद तरीन मशीन पिस्टल निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। खासा खौफनाक हथियार है, इमरान ने पिस्टल को उलट पलट कर देखते हुए गौर से कहा। मैंने चेक किया है, ये ग्रेट लैंड साख्ता है, खावर ने कहा। हाँ, लेकिन ये आम हथियार वहाँ आम मार्केट में फरोख्त नहीं होता, क्योंकि इस पर एक ऐसा निशान मौजूद है जिसका ताल्लुक ग्रेट लैंड के एक कदीम तशद्दुद पसंद मजहबी तंजीम से है। इस तंजीम को सालूस कहा जाता है और ग्रेट लैंड ने इस तंजीम पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि ये इंतहाई फिरका वाराना और मजहबी जुनूनी तंजीम है और उसके मकासद में अहम मकसद यहूदियों की सरकूबी था और इस तंजीमों के हाथों बहुत से यहूदी हलाक भी हुए। लेकिन फिर इस तंजीम का जोर खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये तंजीम किस्सा पारी ना बन गई। लेकिन इस जदीद पिस्टल पर इसके खसूसी निशान की मौजूदगी बता रही है कि ये तंजीम ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपना काम भी कर रही है, इमरान ने कहा। तो खावर और सिद्दीकी के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। आपका मतलब है कि फरखंदा का ताल्लुक सालूस से है? सिद्दीकी ने कहा। फरखंदा सालूसेन भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इस पिस्टल पर मौजूद इस तंजीम का निशान है, ये देखो, गहरे अंदाज में लिखा हुआ एस, इमरान ने कहा और मशीन पिस्टल सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिया। इमरान साहब, اگر فرخندہ سالوسین ہے تو پھر اس کا خصوصی طور پر خاور سے ملنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ صدیقی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، پھر ہی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ سے فرخندہ کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد فرخندہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اود کر آئی تھی۔ تم نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور تم دونوں کون ہو؟ فرخندہ نے پہلے خاور اور پھر عمران اور صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ صدیقی ہے، فور اسٹارز کا چیف، اور میرا نام حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مدان بندہ نادان علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہے، عمران نے اپنا مخصوص شگفتہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ 5-in-1، واہ، فرخندہ نے کہا۔ عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے عمران نے جو القابات اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ چار تھے، اور پانچواں اس کا اپنا نام تھا، اس لیے فرخندہ نے اسے 5-in-1 کہا تھا کہ پانچ مختلف شخصیتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تمہاری بہن لیلا اور تمہارا بہنوئی ارباب تمہارے لیے بے حد پریشان ہیں، اگر کہو تو میں ارباب کو فون کر کے بتا دوں کہ تم بخیر و عافیت اور زندہ سلامت ہو۔ زندہ سلامت تو ہوں، لیکن بخیر و عافیت نہیں ہوں، کیونکہ خاور نے مجھے زخمی کر دیا ہے، میرا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہے، فرخندہ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر پھٹنے سے اندر سے کچھ برآمد ہو سکے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی کاسے کا کیا کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو فرخندہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم باتیں اچھی کرتے ہو، لیکن یہ خاور نے یہاں میلہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیا اسے مجھ سے خطرہ درپیش تھا، یا تم دونوں کو مجھے دکھا کر اپنے انتخاب پر داد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے تو خاور پر فائر کھول دیا تھا، اگر یہ فوری حرکت میں نہ آتا تو اب تک منکر نکیر کے حساب کتاب سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا، عمران نے کہا۔ منکر نکیر، حساب کتاب، یہ تم کیا بولنا شروع کر دیتے ہو؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ وہ دو فرشتے ہیں جو مردے کا ابتدائی اور بنیادی انٹرویو کرتے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ تم نے خاور پر فائر کیوں کھولا تھا؟ کیا واقعی تم خاور کو ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یہ ہوٹل میں کھانا کھلانا کا وعدہ کر کے مجھے یہاں لے آیا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلانا شروع کر دیا۔ اس پر مجھے احساس ہوا کہ خاور کی نیت خراب ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اسے ہلاک کر کے یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ اس قدر برق رفتاری سے حرکت میں آ جائے گا، اور میں جو مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں اتنی آسانی سے مار کھا جاؤں گی، فرخندہ نے جواب دیا۔ تو خاور کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے شاید ذہن میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ فرخندہ اس طرح کی بات کرے گی، اور اس کی نیت پر اس حد تک شک کرے گی کہ اسے گولی مارنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ یہ مشین پسٹل تمہیں کس نے دیا ہے؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ مجھے تحفے میں دیا جائے؟ خاصا خطرناک ہتھیار ہے، میں نے اسے اپنی ذاتی سیفٹی کے لیے خود خریدا تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم ہو کون؟ آخر تم مجھ سے اس انداز میں انٹرویو کیوں کر رہے ہو؟ فرخندہ نے کہا۔ کہاں سے خریدا تھا اور کب؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں تمہاری کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہوگی، فرخندہ نے کہا۔ وکیل سے یا بہنوئی سے؟ عمران نے کہا۔ تو فرخندہ بے اختیار چونک پڑی۔ چلو ارباب سے بات کرا دو، فرخندہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ارباب بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ارباب کی آواز سنائی دی تو فرخندہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات کچھ مزید بڑھ گئے۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکشن بول رہا ہوں، تمہاری سالی فرخندہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس سے بات کر لو، پھر مزید بات ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور فرخندہ کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن فرخندہ نے ریسیور لینے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا کر رابطہ ہی ختم کر دیا۔ میں ارباب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم میری لیلا سے بات کراؤ، فرخندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا نمبر ہے؟ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تو فرخندہ نے فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے فرخندہ کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے اور آخر میں اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لیلا، میں فرخندہ بول رہی ہوں، میں یہاں دشمنوں میں گھری ہوئی ہوں، تم یہاں فوراً پہنچو، اسٹار کالونی کوٹھی نمبر 12، اور مجھے یہاں سے صحیح سلامت نکال کر لے جاؤ، فرخندہ نے بڑے مظلومانہ لہجے میں کہا۔ تو صدیقی اور خاور کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ کون ہے تمہارے دشمن، مجھے بتاؤ، دوسری طرف سے قدرے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دو تو 4 اسٹارز کے رکن ہیں، خاور اور صدیقی، اور ایک احمق سا نوجوان ہے، ڈگریاں تو لمبی سی سناتا ہے لیکن باتیں احمقانہ کرتا ہے، نام اس نے علی عمران بتایا ہے۔ تم بس فوراً پہنچو، فرخندہ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس نے ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر رکھ دیا۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا، ریسیور رکھ کر فرخندہ نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا کہ جیسے اپنی اداکاری کی داد وصول کرنا چاہتی ہوگی۔ ہاں، لیکن سالو سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ عمران نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ سالوس؟ کون سالوس؟ کیا یہ کسی دیوتا کا نام ہے؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران اس کے لہجے ہی سے سمجھ گیا کہ یہ اداکاری کر رہی ہے۔ یہ مشین پسٹل تمہیں کس نے دیا ہے؟ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے سے مشین پسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ایک دوست ہینری نے میری فرمائش پر مجھے مارکیٹ سے دلایا تھا۔ لیکن تم نے کیا نام لیا تھا؟ سالوس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ ہینری کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ میرا اب بھی دوست ہے، اور دوستوں کے ایڈریس تو معلوم ہی ہوتے ہیں۔ ہینری معروف کلب کوئن روز کا مینیجر ہے، لیکن اس نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی کہ وہ اس کلب کا صرف مینیجر ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے، فرخندہ نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکشن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میں ارباب بول رہا ہوں، کوٹھی کے بارے میں تو تفصیل تو فرخندہ نے لیلا کو بتا دی، اس لیے یہاں کا فون نمبر معلوم کر لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیلا میرے سر پر سوار ہے کہ ہم فوراً آپ کے پاس پہنچے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو فون کر کے پوچھ لوں کہ کیا میرا آنا ضروری ہے، ارباب نے کہا۔ ہاں آ جاؤ، بلکہ بہتر ہے کہ لیلا کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ اس کے سامنے فرخندہ سے چند ضروری باتیں ہو جائیں، عمران نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں، ارباب نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی لمحے ہو سکتے ہیں، اس لیے تم آ جاؤ تو بہتر ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ خاور باہر احسن سے کہہ دو کہ جب ارباب اور لیلا آئے تو وہ انہیں اندر پہنچا دے، عمران نے ریسیور رکھ کے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو خاور سر ہراتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہینری سے تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے؟ عمران نے ایک بار پھر فرخندہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ 10-12 سال، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری دوستی کو۔ تم نے دوستی پر کوئی کتاب لکھنی ہے جو تم اس انداز سے پوچھ رہے ہو؟ فرخندہ نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں واقعی کسی اسپتال میں سے داخل کرا دینا چاہیے، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا نام صدیقی ہے؟ और तुम फोर स्टार्स के चीफ हो। इमरान ने जवाब देने से पहले फरकंदा ने सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम मुझे और फोर स्टार्स को कैसे जानती हो? सिद्दीकी ने इससे बराह रास्त मुखातिब होकर कहा, मैं जब ग्रेट लैंड से यहाँ आई तो चंद रोज तो मैंने लैला के साथ क्लबों में जाने और शॉपिंग वगैरह करने में गुजार दिए, लेकिन मैं फिर बोर हो गई क्योंकि लैला को सिर्फ खाने पीने और शॉपिंग करने के अलावा कुछ नहीं आता। उसकी जिंदगी बातें करने, खाने पीने और शॉपिंग करने में गुजर रही है। चुनाचा मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और मैंने ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर दिया जिनकी जेर जमीन दुनिया में अहमियत होती है, लेकिन ये सब लोग इंतहाई अहमक और घटिया किस्म के थे। इसलिए मैंने भरपूर कोशिश की, इसलिए मैं फिर बोर हो गई। फिर अचानक एक क्लब में खावर की एक बदमाश से होने वाली फाइट को मैंने देखा तो मैं बेहद मुतासिर हुई। फिर मुझे एक वेटर ने फोर स्टार्स के बारे में बताया कि पूरी जेर जमीन दुनिया फोर स्टार से इंतहाई खौफजदा रहती है क्योंकि फोर स्टार्स बेहद पढ़े लिखे साफ सुथरे किरदार के लोग हैं। वो किसी किस्म की अय्याशी भी नहीं करते और ना इनका कोई ताल्लुक बदमाश लोगों से है। ऐसे किरदार हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं, इसलिए मैंने लैला पर दबाव डाला कि मुझे फोर स्टार्स के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया करे। इस पर अरबाब के चीफ मैनेजर मोहसिन से बात की। इससे चंद रोज बाद मुझे चार अफराद की तस्वीर ला कर दी। इन तस्वीर पर नोमानी और एक तस्वीर पर चौहान लिखा हुआ था। खावर का एड्रेस भी मालूम हो गया जबकि बाकी किसी का एड्रेस मालूम ना था। तस्वीरें मैंने लैला के कहने पर जला दी। उसके बाद मैंने खावर के फ्लैट पर पहुंच गई। फिर खावर मुझे यहाँ ले आया और फिर इसने जब मुझ पर गुस्से का इजहार किया तो मैंने वाकई इसे हलाक करने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने उल्टा मुझे जरब लगाकर बेहोश कर दिया। अब मुझे होश आया तो सिद्दीकी और तुम दोनों भी यहाँ मौजूद थे। और खंदा ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुम असल में चाहती क्या थी? इमरान ने पूछा। खावर से शादी करना चाहती थी, फरखंदा ने बड़े सादे से लहजे में कहा तो खावर बेख्तियार उछल पड़ा जबकि सिद्दीकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुबारक हो खावर, इमरान बेख्तियार हंसते हुए कहा। ये अहमक औरत है इमरान साहब, इसलिए इसे वाकई मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। खावर ने गुस्से लहजे में कहा, क्या तुमने मुझे मेंटल अस्पताल पहुंचाने का कह रहे हो? तुम्हें मालूम है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ जबकि तुम तो मुझसे शक्ल से ही अनपढ़ दिखाई दे रहे हो। इसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ शादी का सोचा है, तो तुम्हें इस बात पर फख्र करना चाहिए और मेरा ममनून होना चाहिए। फरखंदा ने आंखें निकालते हुए कहा। इसी लम्हे दूर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तुमने क्रिमिनोलॉजी में नहीं बल्कि अहमकाना लॉजी में ग्रेजुएशन की होगी, खबरदार। अब अगर मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। खावर ने इंतहाई गुस्तीले लहजे में कहा। उसका चेहरा वाकई गुस्से से सुर्ख हो गया था। खावर, क्या हो गया है तुम्हें? इस अंदाज में खवातीन से बात नहीं किया करते, सिद्दीकी ने खावर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना नहीं चाहते? फरखंदा ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा हो। क्यों, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं ऐसा सोचूं? खावर ने गुस्से लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे अरे, अभी से लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए तमाम उम्र पड़ी है, इमरान ने कहा। और उसी लम्हे दरवाजा खुला और अरबाब और उसके पीछे उसकी बीवी लैला अंदर दाखिल हुए। तो इमरान उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ तो खावर और सिद्दीकी भी उठ खड़े हुए जबकि फरखंदा वैसे ही बैठी रही। लैला अंदर दाखिल होते हुए तेजी से उस तरफ बढ़ी जहां फरखंदा बैठी थी। तुम यहाँ कैसे पहुंच गई और तुम ये क्यों कह रही थी कि तुम दुश्मनों में घिरी हुई हो? लैला ने फरखंदा से मुखातिब होकर कहा। जबकि अरबाब इमरान और उसके साथियों से मुसाफा करके इमरान के साथ ही एक खाली कुर्सी पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर संजीदगी और कदरे गुस्से के तासुरात नुमाया थे। शायद यहाँ आते हुए रास्ते में दोनों मियाँ बीवी में कोई झड़प हुई थी, जिसके तासुरात अभी तक अरबाब के चेहरे पर मौजूद थे।